नमस्कार श्रोताओ, छिंदवाड़ा वालों से आपका दोस्त योगेश। हमारा आज का विषय है जलवायु परिवर्तन। जिस तरीके से मानवीय जीवन पर जलवायु परिवर्तन के कारण बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, अधिक बारिश, ओलावृष्टि, अतिवृष्टि जैसी आपदाओं से सामना करना पड़ रहा है। प्राकृतिक गतिविधियों के कारण भी इसका असर मानवीय जीवन पर पड़ रहा है। आज हमारे साथ छात्र रोशन गायकवाड़ जुड़े हैं, जो कि जलवायु परिवर्तन पर हमारे साथ जानकारी साझा करेंगे। रोशन जी, मोबाइल वाणी पे स्वागत सर आपका।
बहुत बहुत धन्यवाद सर।
सर, क्या लगता है कि जलवायु परिवर्तन के कारण मूल कारण क्या है और इसका प्रभाव मानवीय जीवन पर किस तरीके से देखा जा रहा है?
जलवायु परिवर्तन का सबसे मूल कारण तो मानव ही है, क्योंकि मानव के जो आवश्यकता है और उसका जो लालच है, उसी के कारण वह प्रकृति में वो आपदाएं आती है और उसका परिणाम भी मानव को झेलना पड़ता है। जैसे कहा जाता है कि प्रकृति अपने आप को कंट्रोल कर लेती है, लेकिन मानव ने प्रकृति का इतना विदोहन किया है, पेड़ों को काटना, जंगलों को साफ करना, अपनी आवश्यकता अनुसार कारखाने खोल लेना, अति अति दोहन कर दिया, इसलिए प्रकृति अब उन्हें अपने आप को कंट्रोल करने के लिए सब आपदाएं लाती है और इसके वजह से मानव के ऊपर ही असर पड़ता है। इसका मतलब ये है कि मानव खुद का विनाश खुद के हाथों से कर रहा है विकास के नाम पर।
जी सर, क्या देखते हैं प्राकृतिक घटनाओं से हम किस तरीके से और भी अधिक संकट को आमंत्रित दे रहे हैं और जो भी भारत की प्राचीन संस्कृति है उसको किस तरीके से देखते हैं जलवायु परिवर्तन को लेकर, पाश्चात्य सभ्यता को लेकर?
भारत की जो प्राचीन संस्कृति है वह मूल रूप से धार्मिक न होकर वैज्ञानिक तरीके से थी। जैसे कि भारत के प्राचीन घरों में हम देखते हैं या पढ़ते हैं अभी उसके बारे में, तो गोबर से लिपते थे। गोबर से इसलिए लिपते थे कि कीड़े मकोड़े अंदर ना, गोबर की वजह से कीड़े मकोड़े अंदर ना आते और रंगोली डाल उस पर रंगोली डालते थे। तो रंगोली और जो ये गोबर था वह मतलब कोई भी अतिथि या कोई भी लोग घर के अंदर आते थे तो उन्हें अच्छा अच्छा भी लगता था, आकर्षण का केंद्र भी था और इसके वजह साइंटिफिक रीजन ये था कीड़े मकोड़े भी अंदर नहीं आते थे। और आज जो ऐसा होता है कि टाइल्स के घर आ गए तो उस पर स्टिकर चिपका लेते हैं और गोबर का नहीं, ऐसे मतलब कि अपने आम के पत्ते लगाने से बचने के लिए प्लास्टिक के पत्ते लगा देते हैं, तो एक प्रकार का निर्जीव हो जाता है सब कुछ। और उसमें क्या है कि घर का आकर्षण भी नहीं रहता और वो जो संस्कृति है, हम अपनी संस्कृति भूलते जा रहे हैं और जो आज संस्कृति हम अपना रहे हैं वह पाश्चात्य पश्चिमी देशों की संस्कृति है। इसका कारण ये, इसका परिणाम ये हुआ कि जो देश हमसे आग तक नहीं मिला पाते थे आज हमसे तो बहुत आगे चल गए।
जी सर, मेरा अगला सवाल इसी को लेकर है कि जो आज का बाजारवाद है और उसकी महत्वाकांक्षा, इस पर कितना प्रभाव डाल रही है जलवायु परिवर्तन पर?
जी, जो बाजारवाद है, बाजार का तो एक ही उद्देश्य है, ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना। और इस लाभ के लिए मतलब इस बाजार के लिए सबसे कच्चा माल जो वस्तुएं होती है वह जंगलों से प्राप्त होती है और प्रकृति की देन है, और ये प्रकृति की देन का मानव इतना उपयोग कर रहा है अपना लाभ अर्जित करने के लिए, धन कमाने के लिए, कि प्रकृति की ओर ध्यान तक नहीं दे रहा है। इसकी वजह से प्रकृति में कई अलग मतलब ये समझ लो कि अलग तरह से मूवमेंट हो रहे हैं और यह मूवमेंट उनके प्रकृति के विनाशकारी रूप के इसमें बाहर आ रहे हैं और प्रकृति फिर अपने आप को कंट्रोल कर रही है इसकी वजह से और विनाश आ रहे हैं।
जी सर, वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन को लेकर सम्मेलन किए जा रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन में हो रहे बदलाव को किस तरीके से मानवीय जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सके, लेकिन इसका एक जमीन स्तर पर क्या मोटा मोटा संदेश जा रहा है जलवायु परिवर्तन को लेकर?
जी, जैसे वैश्विक स्तर पर तो कई अंतरराष्ट्रीय समितियां बन रही है और उसमें जैसे हमारा देश भारत में उसमें भाग ले रहा है और उसका उसके नेतृत्व में काम कर रहा है, लेकिन ये सिर्फ समितियां अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होने के कारण इसका मतलब कोई इसकी तरफ ज्यादातर हाँ देखा जाए तो प्रकृति की तरफ वैसे कोई ध्यान नहीं देता, सब विकास की तरफ ध्यान देते हैं। बाकी देश भी लाभ कमाना चाहते हैं और विकास के नाम विकास देखना चाहते हैं सबसे ज्यादा, तो प्रकृति पर बात करने सभी देश बसते हैं फिर हालांकि, लेकिन वो कुछ देश ऐसे भी है कि जो प्रकृति पर बात करते हैं उसके बारे में कार्य भी करते हैं, ऐसा नहीं है। तो उसमें क्या है कि बहुत उसके जो देश काम करते हैं प्रकृति के बारे में उनके देशों में भी लाभ होता है, और बाकी देश जो अधिकतर बाकी देश तो प्रकृति के बारे में सोचते नहीं, इसलिए हमें इसका प्रत्यक्ष लाभ नहीं मिल पाता है।
जी सर, मेरा अंतिम सवाल यही है कि एक आम नागरिक जलवायु परिवर्तन में किस तरीके से अपनी अहम भूमिका निभा सकता है। जिस तरीके से देखा जाए तो एक किसान जैविक खेती करता है, दूसरा किसान रासायनिक खेती करता है। एक खेत का पानी दूसरे खेत में जाए या फिर नदियों में जाए, नालों में जाए, तो जीव जंतुओं पर भी इसका क्या प्रभाव देखा जा रहा है, जिसके कारण जलवायु परिवर्तन में भी कुछ प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो इसको किस तरीके से एक आम नागरिक का जलवायु परिवर्तन में के प्रभाव को कम करने में अपना योगदान दे सकता है।
जैसे जैविक खेती तो बहुत ही लाभदायक होती है, जैसे सिक्किम जो है देश का पहला राज्य बन गया जो जैविक खेती करता है, और जैविक खेती भी बहुत लाभदायक होती है। उसकी वजह से जो हमें जो पोषण मिलना चाहिए सब्जियों से वो हमें मिल पाता है, लेकिन आजकल उर्वरक आ गए, कम समय में ज्यादा उत्पादन करने की होड़ लग गई है बाजार में, इसकी वजह से अत्यधिक अत्यधिक उर्वरकों का छिड़काव करने से मिट्टी की जो उपजाऊपन है और जो क्षमता है वो पूरी तरह निचोड़ लेता है किसान, ताकि ज्यादा उत्पादन मिल सके, और जो कंपनियां इसको और प्रोत्साहन देती है क्योंकि उन्हें तो ज्यादा लाभ मिलता है इससे। तो प्राचीन काल में भी हम देखे कि भारत में जैविक खेती से ही जैविक तरीके से ही खेती होती थी, और यह खेती सर्वोत्तम सर्वोत्तम उत्तम मानी गई है, और जो उर्वरक अपने रासायनिक उर्वरक है वो तो पूरे मिट्टी को मार देते हैं, और फसल के सबसे महत्वपूर्ण कारण तो मिट्टी है, मिट्टी में जान नहीं होंगे तो फसल कैसे उगेंगी, और ये रासायनिक उर्वरक तो मिट्टी की शक्ति को निचोड़ डालते हैं, इसलिए हमें रासायनिक उर्वरक का प्रयोग न करते हुए अगर हम जैविक खेती का उत्पादन करें तो इससे प्रकृति को भी लाभ होगा और मानव को भी लाभ होगा।
जी, तो ये थे हमारे साथ रोशन जी गायकवाड़, जिन्होंने जलवायु परिवर्तन के कारण मानवीय जीवन पर किस तरीके से प्रभाव पड़ रहा है और जलवायु परिवर्तन के कारण अधिक बाढ़, भूस्खलन और ज्वालामुखी जैसी अनेक समस्याएं हमारे सामने आ रही है, इसी विषय पर हमारे साथ रोशन जी ने जानकारी साझा की। रोशन जी, मोबाइल वाणी को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।
बहुत बहुत धन्यवाद सर।
जी, छिंदवाड़ा वाले सब दोस्त योगेश, धन्यवाद।